अध्याय 63 दाऊद और गोलियत। ये अध्याय पहला शमूएल 16 आयत 144 से 23-17 पर आधारित है। जब शाऊल राजा को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना था और जब उसे भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसे संबोधित किए हुए निंदा के शब्दों का प्रभाव अनुभव हुआ तो वो निराशा और द्वेषपूर्ण विद्रोह से भर गया। वो सच्चा प्रायश्चित नहीं था जिसके प्रभाव में घमंडी राजा ने अपने सिर को झुकाया था। उसे अपने पाप के आपराधिक स्वभाव की थोड़ी भी स्पष्ट अनुभूति नहीं थी और वो अपने जीवन में सुधार लाने के कार्य के लिए उत्साहित नहीं हुआ, वरन अपनी इस धारणा पर सोचता रहा कि उसे इज़राइल के सिंहासन से वंचित करने और उसके वंश से उत्तराधिकारी छीन लेने में परमेश्वर का अन्याय था। अब वो अपने घराने पर लाए गए विनाश के बारे में सोचने में व्यस्त था। उसे लगा कि शत्रुओं का सामना करने में उसके द्वारा दिखाए गए साहस उसके अनाज्ञाकारिता के पाप को प्रभावहीन करने के लिए पर्याप्त था। उसने परमेश्वर की ताड़ना को दीनता से स्वीकार नहीं किया, वरन उसकी अहंकारी भावना इतनी उग्र हो गई कि वह विवेकहीन होने की सीमा पर पहुंच गया। उसके सलाहकारों ने उसे एक कुशल संगीतकार की सेवाएं लेने का परामर्श दिया, इस आशा में कि साज के शांतिदायक स्वर उसके व्याकुल मन को शांत करेंगे। परमेश्वर की कृपा से दाऊद को, जो वीणा वादन में एक कुशल कलाकार था, राजा के सम्मुख लाया गया। उसकी ऊंची और स्वर्ग द्वारा प्रेरित तानों का वांछित प्रभाव पड़ा। जो विचारमग्न उदासी शाऊल के मन पर काले बादल की तरह छा गई थी, मानो जादू से दूर हो गई। शाऊल के दरबार में जब उसकी सेवाएं समाप्त हो गईं, दाऊद पहाड़ों में अपनी भेड़ों के बीच लौट आया और भावना और आचरण की अपनी सादगी को कायम रखता रहा। आवश्यकता पड़ने पर उसे राजा की सेवा टहल के लिए वापस बुलाया जाता था, ताकि वह अशांत राजशाह के मन को शांत करे और दुष्टात्मा उससे दूर चली जाए। हालांकि शाऊल दाऊद और उसके संगीत में आनंद की अभिव्यक्ति करता था, लेकिन युवा चरवाहा प्रसन्नता और शांति की अनुभूति के साथ राजा के घर से अपने चरागाह के पहाड़ों और मैदानों में चला आता था। दाऊद परमेश्वर और मनुष्य की कृपा दृष्टि में बड़ा हो रहा था। उसे प्रभु के मार्ग में निर्देशित किया गया था और अब वह अधिक संपूर्णता से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता था। चिंतन के लिए उसके पास नए विषय थे। राजा के दरबार में जाकर उसने राजत्व के उत्तरदायित्व को देखा था। उसने उन प्रलोभनों को भी देखा था जो शाऊल की आत्मा पर हावी थे और वह इज़राइल के प्रथम राजा के लेन देन और चरित्र में कुछ रहस्यों को जान गया था। उसने राजत्व के गौरव को दुख के काले बादल की छाया में देखा था और वह जानता था कि शाऊल का घराना अपने निजी जीवन में प्रसन्नता से बहुत दूर था। इन्हीं सब बातों के कारण इज़राइल के अभिषिक्त राजा के मन में अशांत विचार आए। लेकिन जब वह विचारमग्न होता था और चिंताजनक विचारों द्वारा सताया जाता तो वह अपनी वीणा का सहारा लेता और ऐसा तान छेड़ता जो उसके मन को प्रत्येक अच्छाई के रचयिता की ओर उठाता और जो काले बादल भविष्य के क्षितिज को धुंधला करते प्रतीत होते उन्हें छितरा दिया जाता। परमेश्वर दाऊद को विश्वसनीयता का पाठ पढ़ा रहा था। जैसे मूसा को उसके कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया था, उसी प्रकार प्रभु यिशै के पुत्र को अपने चुने हुए लोगों का मार्गदर्शक बनने के लिए सुयोग्य बना रहा था। अपनी भेड़ों की देखरेख और चौकसी में वह उस दायित्व का परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर रहा था जो महान चरवाहे का अपने चरागाह की भेड़ों के लिए होता है। वो एकांत पहाड़ियां और भयंकर घाटियां, जहां दाऊद अपनी भेड़ों के साथ घूमता था, मांसाहारी पशुओं की खो थी। यर्दन के किनारे की झाड़ियों से अक्सर भूख से पागल शेर या पहाड़ों में अपनी खो से भालू निकल आते थे और भेड़ों पर आक्रमण करते थे। उस समय की परंपरा के अनुसार हथियार के नाम पर दाऊद के पास केवल गोफन और चरवाहे की लाठी होती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके सुपुर्द भेड़ों की सुरक्षा में प्रारंभ में ही साहस और शक्ति का प्रमाण दे दिया। इन मुठभेड़ों का वर्णन करते हुए बाद में उसने कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। शमूएल 17 आयत 347-35। इन मामलों में दाऊद के अनुभव ने उसके हृदय को प्रमाणित किया और उसमें विश्वास, सहनशक्ति और साहस को विकसित किया। शाऊल के दरबार में बुलाए जाने से पहले दाऊद ने साहसिक कार्यों द्वारा विशिष्टता प्राप्त की थी। जो अधिकारी उसे राजा के ध्यान में लाया था, उसने उसे वीर योद्धा, बात करने में बुद्धिमान और रूपवान घोषित किया और कहा कि यहोवा उसके साथ रहता है। जब इसराइलियों ने पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, यिशै के तीन पुत्र शाऊल के नेतृत्व में सेना में भर्ती हुए, लेकिन दाऊद घर पर रहा। कुछ समय पश्चात वो शाऊल की छावनी देखने गया। पिता के निर्देशानुसार उसे अपने बड़े भाइयों के लिए उपहार और संदेश ले जाना था और पता लगाना था कि वे सकुशल व सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन यिशै इस बात से अनजान था कि युवा चरवाहे को एक उत्कृष्ट विशेष कार्य सौंपा गया था। इसराइल की सेनाएं संकट में थीं और दाऊद को स्वर्गदूत द्वारा उसके लोगों को बचाने का निर्देश दिया गया था। सेना के समीप आने पर दाऊद ने हो हुल्लड़ की आवाज सुनी, मानो कोई संग्राम होने को था, और सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी। इसराइलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना अपने सामने करके पाती बांधी। दाऊद रणभूमि को दौड़ा और वहां जाकर उसने अपने भाइयों का अभिवादन किया। वह उनसे बात कर ही रहा था कि पलिश्तियों का शूरवीर गोलियत आगे आया और उसने अपमानजनक भाषा में इसराइल को ललकारा और उन्हें उनके जत्थों में से एक ऐसे पुरुष को भेजने की चुनौती दी जो उससे द्वंद्व युद्ध करे। उसने अपनी चुनौती को दोहराया और जब दाऊद ने देखा कि इसराइली भय से भरे थे और जब उसे ज्ञात हुआ कि पलिश्ती द्वारा चुनौती कई दिनों से दी जा रही थी और अब तक ढींग मार को चुप कराने के लिए कोई सूरमा खड़ा नहीं हुआ था, उसकी आत्मा में हलचल हुई। उसमें जीवित परमेश्वर के सम्मान और उसके लोगों की साख संरक्षित करने का उत्साह जागृत हुआ। इसराइल की सेनाएं उदास थीं, उनका साहस चूर चूर हो गया था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इसराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। शर्म और क्रोध में दाऊद बोला, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद के सबसे बड़े भाई एलियाब ने जब यह शब्द सुने तो वह भली भांति जानता था कि नौजवान के मन में कौन सी भावनाएं क्रियाशील हो रही थीं। चरवाहे के रूप में भी दाऊद साहसी और बलवंत रहा था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं था। और शमूएल की उनके पिता के घर रहस्यमयी भेंट और उसके चुपचाप प्रस्थान ने उसके भाइयों के मन में उसके दौरे के वास्तविक प्रयोजन के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया। जब उन्होंने दाऊद को स्वयं से अधिक सम्मान प्राप्त करते देखा तो उनकी ईर्ष्या जागृत हो गई और वे उसकी भाई जैसी नम्रता और अखंडता को देह प्रेम और आदर के साथ मान्यता नहीं देते थे। वे उसको मात्र युवा चरवाहे के रूप में देखते थे और एलियाब ने उसके पूछे हुए प्रश्न को अपनी कायरता की निंदा माना, क्योंकि उसने पलिश्ती योद्धा को चुप कराने का कोई प्रयास नहीं किया था। बड़े भाई ने क्रोधित होकर कहा, तू यहां क्यों आया है? जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। दाऊद का उत्तर आदरयुक्त लेकिन कृत संकल्प था। अब मैंने क्या किया है? क्या कोई कारण नहीं?
दाऊद के शब्द राजा को दोहराए गए और उसने नौजवान को अपने सम्मुख बुलाया। जब दाऊद ने कहा, किसी का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा, शाऊल अचरज से चरवाहे के कहे शब्दों को सुनता रहा। शाऊल ने दाऊद को उसके प्रयोजन से दूर करना चाहा, लेकिन नौजवान अडिग था। उसने अपने पिता की भेड़ों की चौकसी करते समय के अनुभवों का वर्णन करते हुए सामान्य विनम्र भाव से उत्तर दिया, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। 40 दिनों से इसराइल की सेना पलिश्ती योद्धा की अहंकारी चुनौती के सम्मुख कांप रही थी, जिसका कद 6 हाथ 1 बित्ता
9 इंच था। उस विशाल आकृति को देख उनके हृदय बैठ जाते थे। उसके सिर पर पीतल का शिरस्त्राण टोप था और वो एक अंगत्राण पहने हुए था जिसका भार 5000 शेकेल पीतल का था और उसकी टांगों पर पीतल की खातिकाएं थीं। अंगत्राण पीतल के पत्थरों से बना हुआ था जो एक के ऊपर एक इस प्रकार लगे हुए थे मानो मछली के सरहने हों, और वो इतने पास पास जुड़े हुए थे कि उस कवच को कोई तीर या बर्छी नहीं बेध सकती थी। वो दीर्घकाय मनुष्य अपनी पीठ पर पीतल का भाला धारण किए हुए था। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। प्रातःकाल और संध्या होने पर गोलियत इज़राइल की छावनी के निकट आता था और ऊंची आवाज में कहता, तुमने वहां आकर लड़ाई के लिए व्यूह रचना क्यों की है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर उसे मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वो पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली सेनाओं को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। हालांकि शाऊल ने दाऊद को गोलियत की चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दे दी थी, राजा को उसके साहसिक विशेष कार्य में सफल होने की कम ही आशा थी। आज्ञा दी गई कि दाऊद को राजा का निजी कवच पहनाया जाए। पीतल का भारी शिरस्त्राण टोप उसके सिर पर रखा गया और उसकी देह पर बख्तर रखा गया। राजा की तलवार उसके वस्त्र पर कसी थी। इस प्रकार लैस होकर वो अपने काम के लिए निकला, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अपने कदम पीछे किए। उत्सुक दर्शकों के मन में पहला विचार ये आया कि दाऊद ने ऐसी विषम मुठभेड़ में प्रतिद्वंद्वी का सामना करने में अपने प्राण को दाव पर नहीं लगाने का निश्चय कर लिया था, लेकिन साहसी युवक ने ऐसा दूर दूर तक नहीं सोचा था। जब वो लौटकर शाऊल के पास आया तो उसने वो भारी युद्धवस्त्र परे रखने अर्थात उतारने की अनुमति मांगी और कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं है। उसने राजा का युद्धवस्त्र उतार दिया और उसके स्थान पर उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। वो दीर्घकाय मनुष्य निर्भीकता से आगे बढ़ा, इस अपेक्षा में कि उसका सामना इज़राइल के सबसे बलवंत योद्धा से होगा। उसका कवचवाहक उसके आगे आगे चल रहा था और वो ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। जब वो दाऊद के निकट आया तो उसने उसे तुच्छ जाना क्योंकि वो लड़का ही था। दाऊद के मुख पर लाली झलकती थी और उसका गठा हुआ शरीर कवच की सुरक्षा के बगैर लाभ के लिए प्रदर्शित किया गया, लेकिन उसकी युवा रूपरेखा और पलिश्ती के विशाल अनुपात में बहुत अंतर था। गोलियत अचरज और कोध से भर गया। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? फिर उसने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को भयंकर श्राप दिए। उसने उपहास करते हुए कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और बनेले पशुओं को दे दूंगा।
दाऊद पलिश्तियों के सूरमा के आगे कमजोर नहीं पड़ा। आगे बढ़कर उसने अपने प्रतिद्वंदी से कहा, तू तो तलवार और भाला और ढाल लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसको तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। उसका स्वर निर्भीक था और उसकी सुदर्शन मुखाकृति पर आनंद और विजय की आभा थी। स्पष्ट संगीतमय स्वर में दिया गया ये भाषण हवा में प्रवाहित हुआ
और युद्ध के लिए तैयार सैकड़ों सुनने वालों ने सुना। गोलियत का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। क्रोध में उसने अपने माथे की सुरक्षा करने वाले शिरस्त्राण टोप को पीछे किया और अपने प्रतिद्वंदी से बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। यिशै का पुत्र अपने शत्रु का सामना करने की तैयारी कर रहा था। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना और पलिश्ती का सामना करने के लिए स्फूर्ति से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दोनों सेनाएं भौचक्की रह गईं। उन्हें विश्वास था कि दाऊद मारा जाएगा, लेकिन जब पत्थर हवा में से सनसनाता हुआ सीधा निशाने की ओर गया, उन्होंने बलवंत योद्धा को कांपते हुए और हाथों को आगे बढ़ाते देखा मानो वो अंधा हो गया हो। विशालकाय मनुष्य चकराया, लड़खड़ाया और रोगग्रस्त बांज वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गया। दाऊद क्षण भर के लिए भी नहीं रुका। वो पलिश्ती के औधे मुंह गिरे हुए शरीर पर कूदा और दोनों हाथों से गोलियत की भारी तलवार को थाम लिया। एक क्षण पहले गोलियत ने ढींग मारी थी कि वो उसी तलवार से दाऊद का सिर धड़ से अलग कर देगा और उसका मांस आकाश के पक्षियों को दे देगा। अब उसने तलवार को हवा में उठाया और उसके बाद ढींग मार का सिर धड़ से अलग होकर लुढ़क गया और इज़राइल की छावनी से उल्लास भरा शोर उठा। पलिश्ती भयभीत हो गए और हो हुल्लड़ के कारण अप्रत्याशित रूप से भाग खड़े हुए। विजयी इब्रियों की ललकार पहाड़ों की चोटियों में गूंज उठी और वे एकोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एकोन तक गिरते गए। तब इज़राइली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसका कवच अपने डेरे में रख दिया।